आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। कहा, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व गुण विकसित कर रही है युवा संसद की पहल। प्रदेश भर में आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई अलविदा की नमाज। ईद और नवरात्रि पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने शुरू किया विशेष ट्रेनों का संचालन। और अयोध्या में कल से शुरू होगा रामनवमी मेला। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। घाटों पर जल पुलिस रहेगी मुस्तैद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इस वर्ष की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसके अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है।
डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टीमेट है 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टीमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होने से प्रदेश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के विधान भवन में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप लीक से हटकर कुछ नया और अतिरिक्त करते हैं तो वो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 240 युवाओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2019 से शुरू हुई युवा संसद की यह पहल जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व गुण विकसित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पंच प्रणों को अपनाना होगा।
अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था एक विजन, रखा था एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अलग अलग क्षेत्र में जो पांच प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे।
ये महोत्सव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों से उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टर्स और अधिकारियों को बच्चों का सुचारू रूप से इलाज करने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बीते दिनों रात के भोजन के बाद लखनऊ के मुहान रोड स्थित एक संस्था के करीब 70 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न संसाधन सामग्रियों का वितरण किया। राज्यपाल ने 144 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के स्वच्छ सुजल महाकुंभ सेवा सम्मान 2025 के कार्यक्रम में जल समाधान पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल की मदद से आमजन को विभागीय जानकारियां प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति की जानकारी के अलावा टोल फ्री नंबर, QR कोड, नए कनेक्शन को जोड़ने के लिए नंबर और किसी भी प्रकार की शिकायतों से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में माहे रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इसको लेकर राज्य भर में हाई अलर्ट था। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क की तरक्की और देश में अमन की दुआ की।
पूरे लखनऊ में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज बहुत ही पुरअमन तौर पर अदा की गई और हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद ईदगाह में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की और मुल्क की तामीर और तरक्की और हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की गई।
उत्तर रेलवे ईद और नवरात्र के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे की इस सुविधा से यात्रियों को आने जाने में सहूलियत होगी।
उत्तर रेलवे द्वारा आगामी लंबे वीकेंड नवरात्रि तथा ईद के अवसर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए दिल्ली क्षेत्र से विभिन्न स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर, दिल्ली से सहरसा तथा कटिहार के लिए तथा नई दिल्ली से जयनगर के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन किया जा रहा है तथा पुरानी दिल्ली से लखनऊ के लिए रिजर्व स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन किया जा रहा है।
चैत्र नवरात्र को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने वाराणसी परिक्षेत्र में 70 अतिरिक्त बसों को चलाने का फैसला किया है। वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि 29 मार्च को यानी चैत्र नवरात्र के एक दिन पहले से लेकर 6 अप्रैल तक यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
21 हमारी डेली चलती है, लेकिन उसके अलावा हमने 70 बसों का पूरे परिक्षेत्र में बनारस, कैंट, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र और विंध्याचल मिलाकर के 70 बसों की प्लानिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज का किया है। इसमें पूर्व से 21 दोनों मिलाकर 91 बसें उपलब्ध रहेंगी और इनको हम 6 तारीख तक 29 और 30 की मध्य रात्रि से लेकर 6 तारीख नवरात्रि के तिथि तक हम चलाएंगे।
अयोध्या में कल से रामनवमी मेले की शुरुआत हो जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 6 अप्रैल को भव्यता के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर तैयारी पूरी कर ली है। अयोध्या रेंज के IG प्रवीण कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर यातायात प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई है।
सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जल पुलिस SDRF के माध्यम से घाट पर भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और भीषण गर्मी को देखते हुए जो प्रशासन और नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्वास्थ्य के साथ मिलकर के हम लोग इस तरह की व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, व्यवस्थित रखा जा सके, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के कोई कसर ना रहे तो फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ जो भी हमारे पास तकनीकी उपागम है वो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर रहे हैं।
चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। पिछले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज और हमीरपुर में हीट वेव की स्थिति रही, जबकि वाराणसी, सुल्तानपुर और फुर्सतगंज में गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। कहा जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व गुण विकसित कर रही है युवा संसद की पहल। प्रदेश भर में आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई अलविदा की नमाज। ईद और नवरात्रि पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने शुरू किया विशेष ट्रेनों का संचालन। और अयोध्या में कल से शुरू होगा रामनवमी मेला। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। घाटों पर जल पुलिस रहेगी मुस्तैद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।